Ya la máquina. Ay, no.
Shubha Prema Mayam Pranamami Sachi Sukha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. Shri Rama Prabhupada ki Jai Gaur Premanand ji
हमने बोला हम बैठे हैं तो थोड़ा कीर्तन करते
हैं नहीं नहीं कीर्तन कीजिए वो गाड़ी आना था
आना है
हाँ
मुझे लगा फोन है तुझे लगा आ गया तो
नहीं 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 गाड़ी कृष्ण का कथा बोलते
हाँ वो तो मैं अभी बताए 15 मिनट की फिर शाम को जब
नहीं आने से तो फिर होगा कितना बार सुनने से तो कुछ
लॉस नहीं है
नहीं लॉस फायदा ही फायदा है
फिर मैं चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम बता दी हिंदी में बताना ओम अज्ञान तिमिरंजस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम सब ज्वाइन कर सकते कृष्णा चैतन्य और जगन्नाथ जी को ज्वाइन कर सकते हैं तो इसके पास हम सच रहे कृष्णा लीला में जब कृष्णा एक बच्चे के स्वरूप में थे नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पे तो वो बहुत अलग 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 लीलाएं करते थे और उसकी जो बातें हैं बहुत इतने राक्षसों को मारते थे वो जो सब लीला है उसका समाचार जब भी सब देवी देवताओं को मिलता था तो वो बड़े अचंभित हो जाते थे कि ऐसे कैसे एक छोटा सा बालक है वो इतनी अद्भुत लीलाएं कर सकता है। तो तभी जब ब्रह्मा जी सुनते हैं कि एक छोटा सा जो बालक है वो बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये जो छोटा बालक है वो कोई बड़ा भी हो सकता है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भगवान है तो क्या करते हैं वो स्वयं देखने के लिए चले आते हैं कि ये जो बालक है वो कैसे है करते क्या कर रहे हैं। तो जब वो दिन क्या हुआ होता है कि भगवान जो कान्हा है छोटे से बहुत छोटे थे तभी अपनी गैयाओं को लेके अपने सब सखाओं के साथ में वो वन में निकले हैं गैया चराने के लिए और सब गैया इधर उधर चर रही है घास चर रही है तो वो सब अपने सखाओं के साथ में बैठ के थोड़ा खेल रहे हैं और उसके बाद में सब बोले कि चलो अभी भूख लगा है अभी हम सब बैठ के थोड़ा प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो गया चलते चलते थोड़े आगे से जंगल में निकल जाती है और सब सखा इस तरह से जैसे अभी हम बैठे हैं उस तरह से एक गोलाकार में बैठ जाते हैं और सब अपने अपने टिफिन बॉक्सेस है वो खोलते हैं तो सब सखा एक दूसरे को बता रहे हैं पूछ रहे हैं हमें बताओ तुम्हारे डब्बे में क्या है। तो आज तो मेरी माता ने मुझे आज समोसे दिए हैं मेरी माता ने मुझे आज कचौरी दिए हैं लड्डू दिए हैं रसगुल्ला दिया है संदेश दिया है तो सब एक दूसरे को देखते हैं और बांट बांट के सब खाने लगते हैं। परंतु तो सबका बांटने का तरीका कैसा है उन्होंने लाला यानी कि कान्हा को बीच में बिठाया है और सब उनके आजू बाजू घेर के बैठे हैं और सब अपने डब्बे खोलते हैं और सोचते हैं कान्हा आज तो मेरी माँ ने लड्डू दिया है, मुझे पता है तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है, तुम लड्डू खाओ। तो दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं नहीं उसे समोसा ज्यादा पसंद है, तुम समोसा खाओ। सबको चाहिए कि वो पहले
मेरा खाना खाए।
हाँ, मेरा खाना खाए, कृष्णा को पहले खिलाना है फिर उन्होंने खाना है। तो तभी एक जो छोटा बालक था उसमें से, उसका नाम था मधुमंगल। तो कान्हा देखते हैं कि सब मुझे बुला रहे हैं, अपने डब्बे से दे रहे हैं, परंतु मधुमंगल तो शांत बैठा है। तो देखते हैं मधुमंगल आज तुम्हारे पास में क्या है। तो बोलते मेरे पास में तो थोड़ी सी छाछ है, अभी आंटी ने बनाया था ना, अभी दिया था ना दही का पानी, तो थोड़ी सी छाछ है तो वो तुम्हें क्या दूं, सबने तो इतना अच्छा अच्छा लाया है, लड्डू है बर्फी है। तो मधुमंगल उसे छुपा देता है कि मुझे नहीं देना है आपको। तो कान्हा उनके हाथ से झपटने लगते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, छाछ दो मुझे। तो मधुमंगल क्या करता है, लेता है और तुरंत अपने मुंह में भर लेता है कि नहीं देना मुझे कान्हा को, ये क्या दूं, ये क्या छोटी चीज है।
उसको शर्म लगता है।
हाँ, उसको शर्म लगता है मधुमंगल को, तो तुरंत लेता है और अपने मुंह में भर लेता है, परंतु इतना जल्दी जल्दी पी तो नहीं सकता है, तो मुंह में भर के पकड़ के रखा है, अभी पिएगा करके। तो कान्हा क्या करते हैं, कान्हा बोलते तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे चाहिए। तो कान्हा अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बनाता है और मधुमंगल के गालों को फोड़ता है और उसमें से छाछ बाहर आती है, तो हाथ में पकड़ के जल्दी से पी लेता है। ये जब सब लीलाएं चालू है तो ब्रह्मा जी ऊपर से आके देख रहे हैं कि आज देखते हैं कि आज ये छोटा बालक क्या कर रहा है। और जब वो देखते हैं कि सब अपना झूठा खाना कान्हा को खिला रहे हैं तो थोड़े अचंभ में रहता है कि भगवान ऐसे कैसे, भगवान के तो लक्ष्मी जी स्वरूप जो साक्षात लक्ष्मी है वो उन्हें 56 भोग खिलाते हैं, वो किसी का झूठा क्यों खाते रहेंगे। परंतु जब ये देखते हैं कि मधुमंगल के मुंह से छाछ फोड़ के ऐसे निकाल के पी रहे हैं तो बोलते छी 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 छी, भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो उनके मन में विश्वास हो जाता है कि सब भले बोल रहे हो ये कान्हा है वो मेरे भगवान है, परंतु मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर सोचते हैं कि चलो कुछ तो तरकीब करके एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो भगवान की परीक्षा करने के लिए डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि सब बैठ के खा रहे हैं और उनकी जो गाय है उनके जो बछड़े हैं वो सब जंगल में थोड़े आगे चले गए हैं। तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी, उनके जो सब गाय और बछड़े हैं वो सबको चुरा लेते हैं और एक गुफा में जाके छुपा देते हैं। थोड़े समय के बाद में सब ग्वाल बाल है वो सोचते हैं अरे हमारी गायों की आवाज तो कुछ नहीं आ रही है, गाय की आवाज आती है ना ऐसे करके आवाज आती रहती है, तो आवाज नहीं आ रही है तो सोचते हैं कुछ तो है, हम देखने को जाते हैं। तो कान्हा क्या बोलते हैं, तुम सब खाना खाओ, तुम अपना खाने में बीच में विलंब मत करो, तुम सब खाते रहो, मैं स्वयं जाके देखकर आता हूँ और गायों को लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये है भगवान, भगवान नहीं चाहते कि अब उनके भक्त कोई कष्ट उठाए, खुद स्वयं को कष्ट उठाने के लिए मंजूर है परंतु भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। तो सब ग्वालों को बोलते हैं तुम बैठो, हम जाके गाय को देखकर आते हैं। जब ये गायों को देखने को चले गए जंगल में तो कोई गाय दिख ही नहीं रही है, ना गाय दिख रही है ना बछड़े दिख रहे हैं। और कृष्णा का कैसा था, उनको सब अपनी जो गाय है ना सबके नाम पता थे, बहुला नंदिनी, जैसे ही वो बोलते थे एक एक के नाम लेते थे, गंगा पद्मा, सब भाग भाग के हमेशा आ जाती थी। भगवान को सबके नाम बता दे, कितनी गाय थी उनके पास में, 900,000 गाय थी, 900,000 गाय को पहचानते थे कि कौन सी कौन है कैसे। तो सबको बुला रहे हैं परंतु कोई आ नहीं रहा है। तो फिर क्या करते हैं भगवान, आंख बंद करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि किसकी करतूत है, ब्रह्मा जी ने ये सब किया है। तो कहते कोई बात नहीं, मैं ब्रह्मा जी को समझा दूंगा, देख लेता हूँ। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से जो ग्वाल बाल सब बैठे थे उनको भी ब्रह्मा जी चुरा चुके हैं, उनको भी उन्होंने चुरा लिया है और वही गुफा में निद्रा में सुला दिया है। तो भगवान देखते हैं कि ना तो गाय है और ना तो ग्वाल बाल है, सबकी चोरी तो ब्रह्मा जी ने कर ली है। तो ब्रह्मा जी को तो समझ आते हैं भगवान की, ब्रह्मा जी को मेरी परीक्षा लेनी है। तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत ही आंख बंद करके उनके शरीर से सारी 900,000 गाय और जो भी ग्वाल बाल थे वो सब उससे उपस्थित हो जाते हैं, उनसे आ जाते हैं। और एक एक गाय बछड़े और ग्वाल बाल जैसे ओरिजिनल थे वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, वैसे ही कूदते हैं, बराबर से सब रेडी हो गया तो भगवान अपने ग्वाल बाल और गाय और बछड़ों को लेकर वृंदावन वापस जाते हैं। जब भगवान वृंदावन वापस जाते हैं तो सब गोपी गण है वो देखते हैं कि अरे आज हमारे बच्चे वापस आ गए, परंतु आज बहुत प्यार आ रहा है हमें अपने बच्चों पर, पता नहीं क्यों ज्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि सब गोपियों को ऐसी इच्छा थी कि वो कान्हा हमारा खुद का बेटा है। उनको हमेशा देख के लगता था कि ये यशोदा मैया का कान्हा कितना सुंदर और कितना निराला है, ये हमारा बेटा क्यों नहीं है। तो भगवान ने इस लीला में वो सबकी इच्छा भी पूर्ण कर दी। भगवान वो सब ग्वाल बाल बन के वो सब माता पिता के सेवा लेने लगे। इस तरह से एक साल पूरा चला गया और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अभी तो वृंदावन में पूरा हाहाकार मच गया होगा क्योंकि मैंने सब ग्वाल बाल और सब गायों को चुरा लिया है, जाके देखता हूँ कि अभी क्या हो रहा है वहां पे। और जब आते हैं तो देखते हैं कोई हाहाकार नहीं, कोई कुछ तकलीफ नहीं, जैसा था वैसा ही सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई फर्क नहीं था। सब ग्वाल बाल उधर है, सब गाय उधर है, सब बछड़े उधर है। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि ऐसे कैसे हो गया। जब ब्रह्मा जी चकित हो गए तो जाके एक बार गुफा में चेक करते हैं कि यहाँ से गायब तो नहीं हो गए, तो देख रहे हैं गुफा में भी ग्वाल बाल भी है, गाय भी है, वृंदावन में भी ग्वाल बाल है, ऐसे कैसे हो गया। तभी उन्हें समझ में आ गया कि ये सब लीला के कारण है भगवान कृष्ण। फिर वो आते हैं और कृष्णा के पैरों में पड़ते हैं और कृष्णा को बताते हैं कि भगवान आपने मुझे ये सृष्टि का सर्जनहार बनने की मौका दिया, परंतु आखिर में तो आप ही सर्जन करता हो, आपने मुझे कुछ कुछ दिया है उसकी वजह से मैं कर सकता हूँ। किस तरह से, जैसे सूरज की रोशनी तो स्वयं की रोशनी है, जब वो तारों के ऊपर पड़ती है तो तारे क्या करते हैं, वही रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, उससे वापस आती है, तभी तो तारे चमकते हैं। जब हम देखते हैं रात को कि आकाश में तारे चमक रहे हैं, वो उनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो जो सूरज से प्रकाश लेते हैं उसी को वापस देते हैं, तभी वो चमकता हुआ दिखते हैं। तो ब्रह्मा जी बताते कि जिस तरह से तारे सूरज के प्रकाश से को वापस देकर चमक रहे हैं, उसी तरह से मैं आपकी दी हुई शक्ति की वजह से मैं सर्जन कर रहा हूँ, परंतु मैं वो भूल गया था और इसलिए मुझे इतना घमंड आ गया है कि इसे घमंड में मैंने आपकी भी परीक्षा ले ली, तो माफी मांगते हैं। और तभी वो भगवान के चरणों में गिरते हैं और भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे इतनी बड़ी पदवी दी इसलिए मैं इतना गर्व में आ गया हूँ, तो आप जब अगली लीला में आएंगे तो आप मुझे इसे तुच्छ जीवन देना कि मैं कभी कोई गर्व की बात करूं ही नहीं। और भगवान कहते हैं तथास्तु। फिर उस समय ब्रह्मा जी आते हैं नवद्वीप में और भगवान के ऊपर तपस्या करते हैं, और जब ही श्री कृष्ण स्वयं कलयुग में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वही ब्रह्मा जी ये समय आते हैं हरिदास ठाकुर बन के, जिनका जन्म हुआ था एक मलेच्छा एक मुस्लिम के घर में। वो ब्रह्मा जी स्वयं है, वो ब्रह्मा जी स्वयं है हरिदास ठाकुर, परंतु क्योंकि उन्हें भगवान से वरदान मांगा था कि अभी मुझे ऐसे घर में जन्म देना कि मैं कोई बात का गर्व ना कर सकूं, तो इसलिए भगवान ने उन्हें मलेच्छा घर में जन्म दिया। और इस जन्म में हरिदास ठाकुर के रूप में वो इतने सुंदर भक्ति करते थे कि भगवान ने उन्हें नामाचार्य की पदवी दी थी। वो सुबह से शाम तक हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते थे, बचपन से लेके आगे तक हमेशा सिर्फ भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा करना और भगवान श्री गौर सुंदर की सेवा करना, उन्हें याद करना और कृष्ण के जप का नाम करना, यही उनका कार्य था। उनकी कई कई लीलाओं के बारे में हमने पहले वर्णन किया है, अभी मैं दूसरी एक छोटी सी लीला बताती हूँ कि एक बार जब हरिदास ठाकुर एक गाँव में आते हैं जहाँ पे एक भक्त थे हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार करके, दोनों भाई थे और वो जो गांव थे उसके वो मुखिया थे। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि हरिदास ठाकुर बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम उनका प्रोग्राम हमारे घर में रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे भक्तों को ब्राह्मणों को बुलाते हैं और फिर हरिदास ठाकुर को निमंत्रित करते हैं कि आप आइए और एक भगवत नाम के ऊपर एक थोड़ा सा प्रचार हमें बताइए। तो तभी हरिदास ठाकुर वहां पे बैठ के अलग अलग पुराणों से अलग अलग शास्त्रों से भगवत नाम की महिमा की चर्चा करते हैं, और वो चर्चा करते समय वो बताते हैं कि एक बार एक बार भगवान कृष्ण के नाम का शुद्धि से, शुद्ध मन से अगर कोई व्यक्ति जप करता है सिर्फ एक बार जीवन में, तो उससे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, जो हम जन्मों तक करने के लिए सोच भी नहीं सकते, उतने सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो जो सब बैठे थे उसमें एक ब्राह्मण था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो गोपाल चक्रवर्ती उठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं कि तुम कैसे ऐसे बोल रहे हो कि भगवान के नाम का एक बार जप करने से इतना फल मिल सकता है। तो हरिदास ठाकुर जो शास्त्रों में कहा गया है उनका प्रमाण देते हैं, स्कंद पुराण में ये कहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा है, परंतु जो गोपाल चक्रवर्ती है उसे विश्वास ही नहीं होता है। वो तो बहुत गुस्सा करते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से उनका अपमान करते हैं। कहते हैं कि तुम एक मलेच्छ मुस्लिम जन्म घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, हम सब ब्राह्मण है और तुम हमें सिखा रहे हो, जो तुम बात बोल रहे हो अगर वो बात सही नहीं निकली तो मैं तुम्हारा नाक छुरी से काट दूंगा। इस तरह से अपमान करके गोपाल चक्रवर्ती यहां से चले जाते हैं। तो हरिण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमने हरिदास ठाकुर को बुलाया हमारे घर में ये प्रोग्राम करने के लिए और एक ब्राह्मण आके इतने बड़े भक्त का अपमान कर दिए। तो वो हरिदास ठाकुर के पैरों में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि कृपा करके आप इसे माफ कर दीजिए और आप इसे जो अपमान है उसे भूल जाइए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मुझे तो इसमें कोई अपमान नहीं लगा है, कोई बात नहीं है, मैं शरीर थोड़ी ना हूं कि अगर मुझे गाली दिए है तो शरीर है गाली, हमको कहां गाली लगती है, तो इसमें कोई आप दुखी होने की बात नहीं है, मैं अभी आगे जाता हूं। तो फिर वो चले जाते हैं और गोपाल चक्रवर्ती जो इतना गुस्सा करके बोलकर गए थे कि अगर आपने बात जो कही है वो गलत है तो आपकी नाक काट दूंगा, उसे 3 दिन में लेप्रसी का मतलब कुष्ठ रोग हो जाता है और थोड़े ही दिनों में कुष्ठ रोग की वजह से उसका नाक गिर जाता है और उसकी हाथों की उंगलियां गिर जाती है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, हरि स्थाने आपाराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने आपाराधे नहीं परित्राण। भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरा अपमान करोगे तो मेरा नाम का जप करके आपको माफी मिल जाएगी, अगर आप तुम्हारा स्थाने अपराध, अगर आप मेरे भक्तों का अपमान करोगे ना ही परित्राण, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता हूं। भगवान को भक्त इतने प्रिय है तो इसीलिए जो भक्तों का अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो उनके लिए भगवान भी हाथ धो देते हैं, भैया दूर रहो मेरे से। तो ये जो हरिदास ठाकुर है उन्होंने हमें क्या सिखाया है, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा है ये जो कलयुग है, कलयुग में हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये जो कलयुग है भगवान हरि का नाम ये एक ही उपाय है, इसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। तो अगर हमें हमारा जीवन सफल करना है तो हमें ये एक ही नौका है जो हमारे ये जो भव संसार तो एक सागर के जैसा बड़ा है, उसको तैरना तो बहुत आसान नहीं है, परंतु अगर हम हरि नाम का सहारा लेंगे, एक आदर्श गुरु की शरण लेंगे, तो उनकी वजह से वो जो कहते हैं कि भगवान हरि का नाम है वो एक बोट की जैसे है, बोट का मतलब एक नौवा, नैया के जैसा है, जो जिसमें बैठ कर हम ये जो भव सागर है उसे आराम से पार कर सकते हैं। और इसीलिए हर धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर एक धर्म में भगवान का नाम लेते हैं। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग उनका जो माला है ना रोजरी, उसके ऊपर यहोवा का नाम लेते हैं। मुसलमान लोग रोज 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, उनके जो अल्लाह के नाम है वो उनका रोज पाठ करते हैं। उसको क्या, वो लोग नमाज पढ़ते हैं ना, उसमें वो लोग भी अपने भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। तो हम कौन से भी धर्म का हमारे जीवन में फॉलो करते हैं, उसमें फाइनली तो एक ही मैसेज है, कलयुग में हमें भगवान का नाम लेना है। और ये सब में कलयुग के लिए सबसे पावरफुल मंत्र दिया गया है, बहुत सारे मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम, राम का नाम तो बहुत इजी है, राम 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 राम, बहुत फटाफट फटाफट हो जाता है ना। परंतु कलयुग में ये सब नाम तो अच्छे हैं, पर सुपर अच्छा नाम है जिसको कहा गया है मंत्र महामंत्र। तो बहुत सारे मंत्र है परंतु महामंत्र का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है उसका अगर हम जाप करते हैं ये कलयुग में, तो हमारा जीवन सफल करने का ये सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की इतने सुंदर विग्रह प्रभु जी माता जी के घर पे विराजमान है, और वो भी इसी का प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को याद करके उनको आंखें से बड़ी बड़ी हो गई है, उनके हाथ अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि वो विरह में आ गए हैं। भगवान के लिए भक्त का नाम, भक्त का लीला, भगवान के भक्त के साथ में लीला, और भगवान भक्तों का संग, यही भगवान चाहते हैं। तो भगवान की यही इच्छा है कि हम उनके जो भक्त ने हमें सिखाया है वो अपने जीवन में सीखे और उसी से हम अपना जीवन आगे बढ़ाए। तो भगवान श्री जगन्नाथ, श्री गौरांग महाप्रभु और श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो कलयुग में अपना जीवन सार्थक करने के लिए हम सबको जप करना जरूरी है। जय श्री राधे श्याम। ऐसे बताया गया है और ऐसे बताया है कि निधिवन के अंदर, निधिवन जाएंगे वृंदावन में, बाकी बिहारी मंदिर से थोड़े से आगे ये वन है, तो दिन के समय में जाने देते हैं सबको अंदर। तो वहाँ पे कृष्ण की रासस्थली अंदर है, तो रासस्थली है और आजू बाजू बहुत सारे पेड़ पौधे और उसके बहुत सारे तुलसी का वन वगैरह सब कुछ है, क्योंकि वृंदा देवी
गोपी करके बोलते हैं,
क्योंकि वो सब वृंदा देवी के अंडर में वो सब वहाँ पे है। रात को अगर वहाँ पे कोई अंदर जाना चाहता है, ऐसे पहले हुआ है कि अगर कोई छुप के अंदर चला जाता है, तो जब दूसरे दिन पे अगर वो आइदर जिंदा नहीं रहता है, अगर जिंदा है तो वो पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की निज की प्रेम स्थली है, लीला की स्थली है, और वहां पे सिर्फ वो ही रह सकते हैं जो भगवान जिनको अंदर रखना चाहेंगे। तो जो रासस्थली है उसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अपने जो एकदम ही करीब के पार्षद है यानी कि गोपियां है उनके साथ में वहां पे उनका लीला चलता है आज भी रात को। और जैसे कहा वैसे रोज ऐसा ही होता है कि रात को वो लोग सब सजा के जाते हैं वहां पे, मतलब फूल बिछा के उनके बेड के ऊपर, थोड़ा खाना भोग वगैरह चढ़ा के जाते हैं, और सुबह आएंगे तो फूल पूरे बिखरे रहते हैं और
सब होता है।
तो ये आज भी वैसा है। तो क्योंकि शास्त्र में गया का बताया गया है कि भगवान जो लीला करते हैं उसमें हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे और अपना माइंड से सब सोचेंगे हमने आंखों से जाके देखना है, तो ये तो होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान को देखने के लिए हमें तो आंख कैसा चाहिए? प्रेम से भरा हुआ चाहिए। ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्योंकि प्रेम अंजन, प्रेम का अंजन जब भी आंख में लगाओगे तो भगवान दिखेंगे, नहीं तो अपनी आंखों से भगवान को देखने चाहोगे तो कहाँ दिखने वाले हैं। तो ये तो सही है कि वहां पे ये सब लीलाएं आज भी होती है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो प्रेम की आंखों से भगवान तो एक दिन उसे दर्शन देंगे। अगर हम अपनी ये मृत आंखों से देखने को चाहेंगे तो होने वाला नहीं है। और ऐसे बताया गया है शास्त्रों में, बताया है ये भागवत में आता है कि ये जो भगवान की लीला है वो बहुत ही गहरी लीला है। इसमें लक्ष्मी जी, कृष्णा तो सेम नारायण है, तो लक्ष्मी जी ने बहुत सुना है कि कृष्णा तो सब गोपियों के घर में लीला करते हैं, तो लक्ष्मी जी उधर आ गई कि हमको भी लीला करनी है, हमको भी देखना है, इसमें भाग लेना है। लक्ष्मी तो उनकी खुद की वाइफ है ना, अलाव होना चाहिए था, मगर अलाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ना भाव है उनका ऐश्वर्य भाव, पूरा सज धज के रहने का, पूरा ऐश्वर्य में रहने का, क्योंकि वो तो रानी है ना, द्वारका की, वैकुंठ की रानी है। तो जब एक बार आ जाती है लक्ष्मी देवी तो वहां पे पूरनमासी है जो यहाँ पे पहरा देती है, तो पूरनमासी पूछती है आप कौन हो, तो बोले लक्ष्मी हो तो मेरे को तो जाना है, मेरे पति की तो लीलाएं चल रही है तो मुझे, मैंने बहुत सुना है जाना है हमको। तो बोलते ऐसे नहीं जा सकते, अंदर तो जाना है तो गोपी बनना है। तो गोपी कैसे, गोपी का मतलब क्या, तो एकदम सादे सीधे कपड़े पहन के, एकदम मन भी उतना ही सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े रानी हैं करके, हम तो दास हैं। तो ठीक है, सादे कपड़े पहन लिए लक्ष्मी जी ने, गहने तो उतार दिए, और फिर बोले चलो अंदर जाना है। जब अंदर जाने लगे तो बाजू में था ना थोड़ा गाय का वो गोबर है ना, गोबर वो पड़ा था। तो पूरन मासी बोली कपड़े तो गोपी के पहन लिए, गोपी जैसे थोड़ा कर लो, थोड़ा गोबर उठा के उधर साफ सफाई कर दो। तो बोले ये तो नहीं हो सकता मेरे से। तो बोले कपड़े पहने से थोड़े गोपी बनोगी, भाव कहाँ है अभी तक गोपी का, तो नहीं जा सकती। तो बाहर ही रह गए। तो लक्ष्मी जी को तक अंदर जाने को अलाउड नहीं है, तो एक पामर जी क्या जाएगा उसमें, हम तो नहीं जा सकते। मगर वही प्रॉब्लम है कि ये जो साइंस है ना, उसने तो प्रूव करना है।
अभी जो बच्चा लोग और पेरेंट्स है तो क्या वो जो लोग नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, उसका कारण क्या है, वो क्यों ऐसा होता है? आपका जो है उसमें वो गैप कम है कि ज्यादा है?
वो तो केस टू केस डिफरेंस होने वाला है अंतर, वो तो केस, क्योंकि जो जीव
दादा आजकल हम लोग का जमाना में
बहुत नजदीक है क्लोजनेस से, अभी तो
अभी तो गैप
बहुत बढ़ता ही जा रहा है।
अभी फैमिली सोचता है वाइफ हस्बैंड एंड
बच्चा,
उसका बच्चा, उसका बच्चा, लेकिन वो लोग पीछे आए और उन लोग
का किसी का बच्चा है,
बच्चा है और उनका ऊपर क्या ड्यूटी है वो लोग समझते नहीं। तो हम लोग देश से इसीलिए देश में गड़बड़ी होता है और देश ध्वंस होने वाला है, क्योंकि जो होना चाहिए वो होता नहीं। तो एटलीस्ट आप लोग जो धर्म लगते हैं वो गैप बहुत प्रचुर होना चाहिए। वो बच्चा लोग जो ये करता है कम से कम आपका धर्म लोग तो
बना चाहिए। एक्चुअली तो ये बात है कि ये जो है ना जो कलयुग का इफेक्ट आ रहा है, एक तो एक्सटर्नल बॉडी के लेवल पे है कि पहले के जमाने में माँ बाप और बच्चों में उम्र में भी कम डिफरेंस हुआ करता था। 20 साल में 22 साल में तो बच्चे हो जाते थे, तो बच्चा 20 साल का होगा, माँ बाप 40 साल के हैं, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, तो अच्छे से रिलेट भी कर सकते थे। अभी तो फिजिकली भी देखेंगे तो डिफरेंस बहुत बढ़ गया है, 30 साल 35 साल वो भी एक, तो उसमें भी एक फर्क आता है। पर इससे भी ज्यादा है अभी जो कलयुग का इफेक्ट है ना, कलयुग का बताया गया शास्त्रों में, कलयुग का मतलब है एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। इसमें तो भाई भाई बहन भाई से तो झगड़ा करने से, बाकी सब तो झगड़ा करते हैं, अपने खुद का खुद से भी झगड़ा करके लेते हैं, क्योंकि ये जो उम्र कलयुग है ना उसी का इफेक्ट है, झगड़ा क्वारल एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब बनावट, हमेशा रिलेशनशिप में पूरा सुपरफिशियल रिलेशनशिप है, न्यूक्लियर हो गए सब लोग, अभी
मनी ओरिएंटेड हो
जाते बस। तो ये जो कलयुग का इफेक्ट है,
ह्यूमैनिटी कमती
वो धीरे 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 कम होती जा रही है, उसमें भी आजकल एजुकेशन के नाम पे, फॉरवर्डनेस के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, हमने कितना जो अपना नॉर्मल वैल्यूज है लाइफ का वो छोड़ दिया है। हमको अपने देश में हमको जो मिला है,
मेरे बोलने का मतलब आदमी बचने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ
नहीं है, सही बात है,
पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा होने से तो सब कुछ मिल जाएगा वो नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आदमी सोचते पैसा हो जाएगा तो किसी को
नहीं चाहिए।
आई कैन डू एवरीथिंग,
करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली में ना ये थोड़े साल पहले ना पब्लिश हुआ था पेपर, विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पता है फर्स्ट कंट्री कौन सा था उसका सर्वे में अराउंड द वर्ल्ड?
बांग्लादेश।
बांग्लादेश गरीब कंट्री है, वो नंबर वन हैप्पी कंट्री था। तो वही प्रूव किया वो लोग, साइंटिस्ट लोगों ने भी जर्नल में, कि हैप्पीनेस डज नॉट रिलेट टू मनी। बट प्रॉब्लम यह है कि आजकल हम सबको ऐसा दिमाग में घुस गया है पैसा से खुशी आता है, पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, वो गलत फहमी है ना, इसी में गड़बड़ है। पैसा से पैसा आ सकता है, कम्फर्ट आएगा,
एंडिंग नहीं है
हाँ, और कम्फर्ट आएगा, खुशी नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। वो जब समझ जाएंगे ना हम कि ये तो भौतिक चीजें है, वो प्यार से रिश्तों से जो मिल सकता है तो से नहीं मिलने वाला है। परंतु मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है थोड़ा इसमें कि एक बार जो थोड़ा भक्ति में समझने लगता है तो थोड़ा सा तो ज्ञान आपके थोड़ा सा विरक्ति ये सब मटेरियल चीज से कम होके फिर चांसेस ज्यादा है कि वो ये सही बात समझ सके कि पैसा सब कुछ नहीं है जीवन में, अगर नहीं है भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो बहुत दूर दूर तक ही समझ नहीं आता। परंतु भक्ति आने से बहुत बार देखा है कि थोड़ा जीवन को और सात्विक हो जाता है। चलो वो अभी गाड़ी आ गया, पहुंच रहा है तो हम लोग ने रेडी होना चाहिए।
रेडी हो गए ना, और कुछ है?